الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتنازل فيهما اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق دکھائیے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے اور ہمیں باطل دکھائیے یعنی اس کی حقیقت سمجھا دیجئے اور اس سے اجتناب کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے اور دعا کر کے پھر اس کے بعد ہم دوا شروع کرتے ہیں کیونکہ دعا کے بعد جو ہے وہ دوا کرنی ہوتی ہے اور دوا صحیح ہونی چاہیے دعا کر لی اور دوا غلط کھا لی یا غلط طبیب سے لے کر کے آئے اور اس کو کھا لیا تو پھر دعا جو ہے وہ اس کے اوپر پھر یعنی معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں دعا تو میں نے کر لی تھی دوا اگر میں نے غلط کھا بھی لی ہے یا غلط کو صحیح سمجھ کے کھا رہا ہوں تو دعا تو کر چکا ہوں نا رائٹ کسی نے بتا بھی دیا کہ دوا غلط کھا رہے ہیں مت کھائیے تو آگے سے جواب کیا دیا کہ دعا تو میں نے کری ہے اللہ سے لیکن دوا میں غلط ہی کھاؤں گا یا تم نے کہہ دیا تو پھر بھی میں دوا صحیح نہیں کروں گا میں دوا غلط ہی کھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا پھر دعا کے ساتھ مذاق بھی کہلاتا ہے اور دعا کی توہین بھی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے علم جو ہے اس کے لیے ہم نے دعا مانگ لی اور دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد جو دوا کرنی ہوتی ہے یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں علم حاصل کرنے کے ٹھیک ہے تو دوا علم کے اسباب وہ بھی صحیح ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ قرآن عظیم الشان ٹھیک ہے قرآن سے ہم علم حاصل کریں تو یہ کیا ہوا علم کا سبب صحیح ہے قرآن مجید پھر اس کے بعد اس میں مزید تفصیل آ جاتی ہے کہ قرآن مجید تو ہم نے اختیار کر لیا علم کا سبب لیکن کیا قرآن مجید کی کوئی صحیح تفسیر بھی استعمال کر رہے ہیں یا غلط تفسیر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں نمبر ون قرآن مجید نمبر ٹو قرآن مجید کی کوئی صحیح العقیدہ مفسر کی ہوئی تفسیر ٹھیک ہے ورنہ قرآن مجید کی تفسیریں بہت سارے لوگوں نے کری ہیں جو کہ صحیح العقیدہ نہیں تھے اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں تھے رائٹ تو انہوں نے بھی تو تفسیریں کری ہیں ہے تو وہ قرآن ہی لیکن تفسیر کسی بد عقیدہ انسان کی ہوئی ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے علاج معالجے کے لیے دعا کر لی اور دوا جو ہے نا وہ کسی غلط ڈاکٹر کے پاس کسی جھوٹے فریبی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے آپ دوا لے کر کے آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی دعا تو میں نے کر لی ہے تو دوا کون کیا ہو گیا اگر میں نے غلط ڈاکٹر سے دوا حاصل کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اب ہم جو ہے وہ دوا کر رہے ہیں علم کی دوا قرآن مجید اور اس کی تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر وہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری علم کے لیے سبب اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس چھوٹی سی تقریر کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا تو آج ہم معروف مسائل پڑھنا شروع کر رہے ہیں معروف القرآن کی جلد نمبر 6 سے اور آیات جو چل رہی ہیں وہ 7 سے لے کر کے 14 سورۃ النمل کی ٹھیک ہے سورۃ النمل کی آیات ہیں یہ جو ہم اب معروف مسائل پڑھیں گے کیونکہ ان کے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور ہم نے اس کا خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی پچھلی کلاس کے اندر اچھا کسی نے سوال لکھا ہے ڈائریکٹ میسج میں جو کہ دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں سوال پہلے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرتے ہیں क्या उसके लिए इस्तखारा करना चाहिए? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया है कि इल्म हासिल करने के लिए जो हम असबाब इख्तियार करते हैं, ठीक है, जैसे कौन सी किताब से इल्म हासिल करना है या कौन से आलिम से हमें इल्म हासिल करना है, तो क्या हमें उसके लिए इस्तखारा करना चाहिए? इस्तखारा करना चाहिए, क्या ख्याल है? हम जवाब दे दें या आप ही से पूछें? क्लास के अंदर माशाल्लाह काफी लोग मौजूद हैं, तो थोड़ा सा क्विज अगर लोगों से किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में समझ में आए, क्योंकि बात तो हम पहले कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, शायद कई दफा कर चुके हैं। तो इनके सवाल का कोई क्लास में से जवाब दे कि इल्म हासिल करने के लिए जो असबाब हम इख्तियार करते हैं, क्या उसके लिए इस्तिखारा करना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए इसका? जी अच्छा, इन्होंने जवाब दिया करना चाहिए इस्तिखारा, खारा, आपने जो लिखा है उसको तो मैं पढ़ूंगा कारा, क्यों, क्यों की आवाज तो कार का हम बनाते हैं, तो खारा तो के एच, खैर इस्तिखारा करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया यस अलोंग विद मशवरा, शेख से मशवरा करें, शेख से मशवरा करें, अच्छा जी, मगर इस्तिखारा नहीं मशवरा भी साथ साथ। अच्छा, जो रास्ता ऑब्वियस हो उसमें इस्तिखारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑब्वियस हो तब इस्तिखारे की जरूरत नहीं है ना, अपने शेख से मशवरा करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया नहीं, अपने मशायख से मशवरा और उलमा से पूछकर असबाब इख्तियार करने चाहिए, अपने शेख के ऊपर एतमाद करना चाहिए। अच्छा चनेस, माशाल्लाह सबने इंटरेस्टिंग जवाब दिए। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि कुरान मजीद की कोई तफसीर, जैसे कुरान मजीद का आपने इल्म हासिल करना है, ठीक है, तो इसके लिए अज्यूमिंग कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी कोई तफसीर लिखी होती, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है ना, उसने भी कोई कुरान मजीद की तफसीर, पता नहीं, खत्म नबूवत वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उससे कोई मंसूब तफसीर है या किसी और, जैसे आजकल तो ये क्या नाम है, जावेद अहमद गामदी साहब जो है, ठीक है, तो उनकी कुरान की तफसीर कोई, ठीक है, तो अब आपके सामने एक तफसीर है वो कादिया मिर्जा गुलाम अहमद की लिखी हुई, एक तफसीर है जावेद अहमद गामदी की लिखी हुई, और एक तफसीर है मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी की लिखी हुई, और एक है मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तफसीर, ठीक है, चार तफसीरें आपके सामने, आपके पास ऑप्शंस हैं, मार्केट गए आपने, मार्केट में खरीदने के लिए गए तो चारों तफसीरें दुकान में मिल रही हैं, अब वहां पर आपको इस्तखारा करना चाहिए, इस्तखारा करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? मिर्जा गुलाम अहमद की लिखी हुई किताब तस्किरा है, तो ना अज्यूमिंग कि कोई तफसीर भी अगर उसने लिखी होती तो, ठीक है ना, नहीं इस्तखारा आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर जो है ना वो जायज और नाजायज के दरमियान है, ठीक है ना, मतलब मुफ्ती शफी की तकरी की तफसीर निकाल दें, तफसीर ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना वो आप इस्तिखारा नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि इनमें से जो अगर चार तफसीरें हैं तो चार में से तीन तफसीरें जो है ना ये बदअकीदा लोगों की लिखी हुई तफसीर है, ठीक है ना, ये अहले सुन्ना वल जमात के लोग नहीं है, ये बदअकीदा लोग हैं, ठीक है, तो यहां पर इस्तिखारे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहां पर जो है वो आपने सिर्फ एक ही अहले हक आलिम है मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने उन्हीं की तफसीर पढ़नी है, ठीक है, यहां पर इस्तिखारे की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, तो इस्तिखारा जो है ना वो हराम हलाल के दरमियान इस्तिखारा नहीं कह रहा था, कि जी मैं हराम को इख्तियार करूं कि मैं हलाल को इख्तियार करूं, इसके दरमियान इस्तखारा तो होता ही नहीं है। अगर किसी ने हराम और हलाल के दरमियान इस्तखारा करने की नीयत कर ली, ठीक है, कि मैं हराम के रास्ते पे जाऊं कि मैं हलाल के रास्ते पर जाऊं, उसका तो ईमान ही सलामत मुश्किल है उसका, है ना। वो वाकई मुफ्ती हजरात फतवा देते हैं, वो उनका काम है, लेकिन हम खाली तरगीबन और तरहीबन बता रहे हैं कि उसका तो ईमान ही फिर मशकूक हो गया अगर उसने हराम हलाल के दरमियान इस्तखारा किया। या बिल्कुल बदअकीदा तफसीर है और सही अकीदा तफसीर है, इनके दरमियान ये इस्तखारा कर रहा है कि मैं कौन सी वाली तफसीर से अपना इल्म हासिल करूं, इसका तो ईमान ही मशकूक हो गया ऐसे शख्स का, ठीक है ना। इस्तखारा ये करेंगे जब दो तफसीरें आपके सामने हैं, ठीक है, एक जो है वो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर है, तफसीर है, और दूसरी जो है वो मौलाना आशिक अलाई की तफसीर है, ठीक है। तो अब जो है ना, अगर आपके पास कोई अहले इल्म बताने वाला नहीं है, कोई आपका शेख नहीं है या कोई आपका उस्ताद नहीं है, और आपने खुद ही से डिसाइड करना है कि भाई मैं दुकान से कौन सी तफसीर खरीद के लेकर के जाऊं, तो वहां पर आप इस्तखारा कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर ली, वहीं दुकान में खड़े खड़े अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर ली, ठीक है। तो इस्तखारे की ये हैसियत है, ठीक है। जब दो जायज रास्ते सामने होते हैं और दोनों के बारे में आपको पता है कि ये जायज हैं और आपको उस वक्त जो है ना कोई मशवरा देने वाला नहीं है, उस वक्त आप इस्तखारा कर लें, ठीक है ना, बस इतना है। अच्छा, किसी और क्या लिखा है, अगर दर्स देने वाले अहले हक में से हैं तो जिन उलमाए नेक उलमा या नेक लोगों और मौजूदा तौर पर एतमाद, नेक लोगों पर मौजूदा तौर पर एतमाद है, उनसे मशवरा करके उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। इसी वजह से हमारे मशायख फरमाते हैं कि पहले आप मशवरा कर लें, अहले इल्म से मशवरा कर लें, वो आपको बता देंगे कि आपके लिए ज्यादा मुनासिब जो है ना वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए ज्यादा मुनासिब हैं, फिर उसके अंदर से जो है ना आप इस्तखारा कर लें, ठीक है ना। या तो वो आपको एक ही ऑप्शन का बता देंगे कि भाई आपके लिए ज्यादा मुनासिब यही लग रहा है, अब आप अल्लाह ताला से इस्तखारा भी कर लें, ठीक है। तो पहले मशवरा, उसके बाद फिर इस्तखारा। आजकल जो है ना वो यही तरीका सिखाया जा रहा है, क्योंकि आजकल एक तो ये कि इल्म बहुत कम है, लोगों में इल्म बहुत कम है, तो जब तक उनको कोई अहले इल्म गाइड ना करे ना, वो बहुत आसानी के साथ गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इल्म बहुत कम है, इंसान इन लोगों अवामुन नास के अंदर बहुत ज्यादा इल्म की कमी है, और दूसरी चीज ये है कि गुमराही के रास्ते जो है ना वो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा। आपके यानी घर पे दस्तक देना तो दूर की बात, आपके हाथों के अंदर गुमराही का पूरा सबब मौजूद है, सारी दुनिया की गुमराही आपके एक हेल फोन के अंदर, राइट, सेलफोन जिसको हमारे हजरत हेलफोन कहते हैं, एक सेलफोन के अंदर सारी दुनिया की गुमराही, बदतरीन गुमराही आपके सेलफोन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इल्म की कमी, उसके ऊपर इतनी ज्यादा गुमराही के असबाब आपके साथ लगे हुए हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर ना ये मशवरा अपने बड़ों से, अपने मशायख से, अहले इल्म से मशवरा जो है ना ये इंतहाई जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिर वो खुद ही आपको कहते हैं भाई अब ये मशवरा तो आपने कर लिया, अब अल्लाह ताला से आप इस्तखारा भी कर लें, अल्लाह ताला रास्ता खोलता है तो आप इस रास्ते पे चलिएगा, अगर रास्ता अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, कोई ऐसे मामला हो गए कि अब आपके लिए इस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है या मुमकिन ही नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मना किया जा रहा है कि आप ये वाला रास्ता ना इख्तियार करें, ठीक है। तो वो फिर आप इस्तखारा बाद में कर लें। इस्तखारा विल बी बिटवीन जायज ऑप्शंस व्हेन यू आर कंफ्यूज एंड यू डोंट हैव एनीवन टू गाइड यू। जी हजरत, पता कैसे चलेगा कि किसकी तफसीर सही है या नहीं, ये आप उलमा से जुड़ के रहते हैं ना, तो फिर आप उनसे पूछते हैं कि कौन सी तफसीर सही है, कौन सी तफसीर सही नहीं है, ठीक है। वही को थोड़ी आएगी आपके ऊपर, राइट, वही तो नहीं आती है ना, ख्वाब में भी नहीं दिखाया जाता है कौन सी तफसीर सही है और कौन सी तफसीर सही नहीं है, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें पता नहीं है कौन सी तफसीर सही है कौन सी तफसीर गलत है, फसअलू अहल जिक्र, तो अहले इल्म से तुम पूछो। अहल जिक्र से यहाँ पर मुराद अहले इल्म है इस आयत के अंदर, ठीक है। शेख का होना ही इस्तखारे का बदल है, नहीं, शेख का होना जो है वो इस्तखारे का बदल हरगिज नहीं है, इस्तखारा एक अलग चीज होती है और इस्तिशारा एक अलग चीज होती है, इस्तिशारा जो है वो मशवरे के लिए तब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बदल नहीं है कोई, استخارے کا. اچھا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا اذا اراد امرا قال اللهم خلی واختر لی. ٹھیک, انہوں نے ماشاءاللہ چھوٹے والی استخارے کی دعا یہاں پہ لکھ دی. ٹھیک ہے, اچھا معروف مسائل ہم پڑھنا پھر شروع کر رہے ہیں. تو پہلی آیت جو اس میں تھی, اس قال نہیں پہلی آیت سے خیر یہ نہیں, ہاں اس سے پہلی آیت, اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا, کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سجھائی دی ہے, مجھے پتہ لگا ہے کہ آگ ہے, دیکھیے میں نے آگ, سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب, ٹھیک ہے, تو میں ان قریب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں یا تمہارے پاس کوئی شہاب قبس کوئی جلتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہوں, لعلکم تصطلون, تاکہ تم اس سے گرمی سینکو. ٹھیک ہے, تو اب اس کے تحت حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان باندھا کہ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے اسباب طبعیہ کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. ٹھیک ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو فزیکل مینز ہیں, اسباب طبعیہ کا مطلب کہ جو نیچرل, طبعیہ کا ترجمہ نیچرل, نیچر سے کریں گے نیچرل, اور اسباب جو ہے وہ مینز. ٹھیک ہے, تو فزیکل مینز کہیں یا نیچرل مینز کہیں, جو جو آپ کی یعنی ایلیمنٹس آف نیچر سے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر, تو ان کو اختیار کرنا توکل کے, یعنی توکل کا مطلب کیا, اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا سارا کام بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی کیے ہیں, مجھے اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کو جو ہے نا وہ توکل کرنا کہلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ دو ضرورتیں پیش آئیں, ایک تو راستہ پوچھنا جو آپ بھول گئے تھے, یعنی بھٹک گئے تھے راستے سے, اللہ کے نبی ہیں رائٹ, لیکن راستہ بھٹک گئے. راستہ بھٹکتا ہے انسان کب ہوتا ہے, جب انسان سے جو اس نے ایک راستہ اپنے لیے طے کیا ہوتا ہے نا, تو وہ کسی بھی وجہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر ادھر جانے کی بجائے ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے نا. تو بھائی کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی جگہ پہنچنے کے لیے تو کچھ دیکھ داغ کر کے ہی نکلتا ہے نا, کچھ سوچ ساچ کر کے, کچھ پتا کر کے ہی نکلتا ہے نا کہ مجھے کدھر جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے ہی گھر سے نکل گئے تھے مصر جانے کے لیے, اور پتا چلا مصر پہنچنے کی بجائے جو ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کی طرح ہے نا انڈیا پہنچنے کی بجائے جو ہے وہ امریکہ پہنچ گئے, امریکہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے تھے رائٹ. نہیں, موسیٰ علیہ السلام مصر ہی کی طرف چلنا شروع ہوئے تھے. کیوں بھائی, ترکی کی طرف کیوں نہیں چلنا شروع ہو گئے تھے, انڈیا کی طرف کیوں نہیں چلنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ ہی نیو کہ مصر کس طرف ہے. ٹھیک ہے, تو راستے کا تو پتا تھا لیکن درمیان سفر, دوران سفر جو ہے کچھ بھول چوک ہو گئی. ٹھیک ہے, تو نبی جیسی صلاحیت والے انسان سے بھی بھول چوک, فزیکل بھول چوک ہو سکتی ہے, روحانی بھول چوک نہیں ہو سکتی کہ گناہ کرنا شروع ہو گئے, اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو گئے, یہ تو نبی سے نہیں ہو سکتا رائٹ. یہ کیپیبلٹی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی نبی کے اندر, لیکن فزیکل بھول چوک نبی سے ہو سکتی ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. جب نبی سے ہو سکتی ہے تو ایک عام امتی سے کیوں نہیں ہو سکتی, ایک غیر نبی سے کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے, دوسرا آگ سے گرمی حاصل کرنا, کہ سردی کی رات تھی اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف جانے کی سعی و کوشش کی, لیکن اس کے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کی بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے امید ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی یعنی وہ نہیں تھا, کیا کہتے ہیں جس کو کلیم کرنا, دعوی کرنا, کہنا ہاں جی میں تو کر کے چھوڑوں گا, میں تو یقیناً کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک ایک یعنی او کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یا تو میں یہ لے کر کے آؤں گا یا میں یہ لے کر کے آؤں گا, ان قریب ہے نا بیوی کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید کا بھی ایک اس کے اندر یعنی عنصر ملتا ہے. معلوم ہوا کہ ضروریات کے حصول کے لیے جد و جہد توکل کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسا کہ آپ نے یقیناً وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی, اور بہت اس کا تذکرہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں, اور شیطان بھی یاد دلواتا ہے یہ والی حدیث, جہاں جہاں اس کو اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے نا ادھر یہ حدیث یاد دلواتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, اعقل و توکل. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے نبی, اونٹ جو ہے نا मैं ऊंट वाला हूं, तो जब मैं अपने घर में आ जाता हूँ वापस, तो ऊंट को जो है ना मैं किसी खूंटे से, किसी दरख्त से, किसी चीज से बांधूं, या मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूं। कि बांधना तो भाई ये है ना कि भाई मेरा ऊंट जो है वो भाग जाएगा और वो यानी उसकी हिफाजत नहीं हो सकेगी और कोई उसको चोरी कर लेगा, ये सारी बातें, जब भी तो आप ऊंट को बांधते हैं, ठीक है, या मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूं कि भाई अल्लाह है ना हिफाजत करने के लिए, भाई मैं क्यों बांधूं, मैं ऊंट को क्यों बांधूं, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल क्यों ना करूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, आपने फरमाया ए अकल, अकल इस्तेमाल करो, लेकिन तर्जुमा क्या बनता है इसका अरबी जुबान में, बांधो अपने ऊंट को, ठीक है, व तवक्कल, और उसके बाद तुम तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हमने कोरोना के जमन में बहुत सारी बातें करी हुई हैं, जो पुराने लोग हैं उनको उम्मीद है कि उसमें से कुछ ना कुछ तो याद होगा, ठीक है। तो ये जो जद्दोजहद करना है, असबाब इख्तियार करना है, ये सब जो है ना ये तवक्कुल के मनाफी यानी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो क्या है कि भरोसा अपनी कोशिश के बजाय अल्लाह पर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बांध दिया है, अब तो बस मेरा जो बांधना है ना ये रस्सी मेरे ऊंट की हिफाजत करेगी, मेरा बांधना इस ऊंट की हिफाजत करेगा, राइट, क्योंकि आई हैव डन ऑल द प्रिकॉशंस, है ना, मैंने सारा काम कर लिया है, अब जो है ना वो ऊंट की हिफाजत मेरी मेहनत करेगी, मेरी अकलमंदी करेगी, मेरे असबाब करेंगे, जैसे यहाँ पे रस्सी, वो ऊंट की हिफाजत करेगी, नहीं, रस्सी कोई ऊंट की हिफाजत नहीं करेगी, तुमने अपने अकल से जो इकदामात उठा लिए वो ऊंट की हिफाजत नहीं करेंगे, हिफाजत तो अल्लाह ही करेगा, राइट, हिफाजत तो अल्लाह ही करेगा। जैसे बड़ी आम सी सादा सी मिसाल, हम लोग हर वक्त उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चा बीमार पड़ जाता है या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, तो हम जो है वो गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, न जाने क्या क्या, राइट, तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा सबब है, शिफा के लिए सबब है, लेकिन क्या इस गोली से लाजमन शिफा मिलेगी, या ये गोली हमें शिफा देगी, ये वैक्सीन हमें शिफा देगी, या ये वैक्सीन जो है वो हमें इन्फेक्शन से बचाएगी, हरगिज नहीं, ये सिर्फ असबाब हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाना तो अल्लाह ही के इख्तियार में है, अगर वो चाहेगा तो इन्फेक्शन से बचाएगा, नहीं चाहेगा तो दुनिया जहान की तुम वैक्सीन लगवा लो तुम नहीं बच सकते, ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। तो भरोसा जो है वो अल्लाह के ऊपर होना चाहिए, और आग आपको दिखलाए जाने में शायद यही हिकमत हो कि इससे आपके दोनों मकसूद पूरे हो सकते थे, यानी अल्लाह ताला ने भी तो आग दिखलाई तो उसकी भी तो कोई हिकमत थी ना, ऐसे कोई थोड़ी खामखा ये आग दिखला दी, तो ये दोनों मकसूद जो मूसा अलैहिस्सलाम को इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की ये नीड्स थी, जरूरियात थी, एक तो रास्ता पता करना और दूसरा गर्मी सेकना और अपनी बीवी को सिकाना, ठीक है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने वही सबब दिखाया जिससे कि ये दोनों मकसद पूरे हो सकते थे, रास्ते का मिल जाना और आग से गर्मी हासिल करना। और ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो सारी की सारी डिस्कशन है ये रूहुल मआनी तफसीर से नकल करी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उमकुसु व तस्कलून जमा के सीगे बोले, ठीक है, कि तुम सब जो है ना वो सेकना, ठीक है, तो हालांकि आपके साथ सिर्फ आपकी बीवी यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, एक बेटी, दोनों से कोई थोड़ी निकाह किया था, एक से निकाह किया था, उनके लिए लफ्ज जमा इस्तेमाल फरमाना बतौर इकराम के हुआ, ठीक है, यानी इज्जत इकराम जो है ना वो जमा के सीगे के अंदर ज्यादा है, ठीक है, जैसे मुअज्जज लोगों में जो अच्छे इज्जतदार घराने होते हैं, शरीफ घराने होते हैं ना, तो वो बड़ों से तो आप जनाब करके बात करते ही हैं, छोटों से भी आप जनाब करके बात करते हैं, और जिन घरानों के अंदर जरा कल्चरल डिफरेंस इस किस्म का होता है कि वहां पे तमीज तरीके का लिहाज नहीं होता, वहां पर छोटों से क्या तमीज से बात करना, वहां तो बड़ों से जो है वो तू करके बात किया जाता है, तुम करके बात की जाती है, राइट, तो कुरान मजीद से ना हमें ये भी सबक मिलते हैं और हदीस मुबारक से भी आदाब, ठीक है, तो अगर हमारे घरानों के अंदर अब तक ये आदाब फॉलो नहीं किए जा रहे तो भाई अब शुरू कर लें, कोई वो तो नहीं है, ऊपर से ठप्पा तो नहीं लगा कि नहीं जी हमारे घर में तो अदब आदाब नहीं हो सकते, हमारा तो ये जी कल्चर है, हमारा तो खानदानी निजाम ही ऐसा है कि तू तड़ाक करके बात करनी है, अबे तबे करके बात करनी है। भाई चेंज कर लेते हैं, देख यू कैन ऑलवेज चेंज थिंग्स राइट, किसी मौके के ऊपर जाकर के नस्ल के अंदर तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना। तो बदतहजीबी वाला बात करने का अंदाज जो है उसको तर्क कर दें, तहजीब वाला अंदाज शुरू कर लें भाई, राइट। आखिर को हमारे नबी अलैहि सलाम ने सिखाया ना, कुरान मजीद ने सिखाया ना, ये तो नहीं कि कोई किसी ऐसी जो है वो कोई शख्स आ गया और उसने आकर के हमें हमें जो है वो ऐसी चीजें बोलनी शुरू कर दी। अपना तरीक अपना बात करने का तरीका छोड़ो और मेरा बात करने का तरीका इख्तियार करो, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो अल्लाह हमारा जो बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, राजिक है, राइट। और उसके जो नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है, जो कि उनके जात की अच्छाई के ऊपर किसी को क्या शक हो सकता है ईमान वाले को, ठीक है। तो वो जब हमें सिखा रहे हैं तो हम क्यों क्यों ना सीखें, हम क्यों ना अपने तौर तरीकों को चेंज करें और बात करने के लहजे को, बात करने के अंदाज को तहजीब और तरीके वाला अंदाज बना लें, ठीक है। तो आज से इंशाल्लाह सब बनाएंगे ना भाई, इरादा करें, एक नेकी मिलती है इरादा करने पर, उसके बाद फिर अल्लाह ताला इरादे के ऊपर अमल करना भी आसान फरमा देते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए कोई इरादा कर लेते हैं ना, उसके ऊपर अमल भी अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप सबसे, ठीक है। तो फिर तो फरमाते हैं कि लफ्ज जमा इस्तेमाल फरमाना बतौर इकराम के हुआ, जैसे मुअज्जज़ यानी इज्जत वाले लोगों में किसी एक फर्द से भी खिताब होता है तो सीगा जमा का इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अपनी अजवाज मुतहरात के लिए सीगा जमा इस्तेमाल फरमाना रिवायात हदीस में वारिद हुआ है, ठीक है। तख़सीस के साथ बीवी का जिक्र आम मजालिस में ना करना बल्कि किनाये से काम लेना बेहतर है। इससे एक और आरिफाना नुक्ता हजरत ने अखज करके यहाँ पे लिखा कि आयत मस्कूरा में कौला मूसा ले अहल ही फरमाया गया है। लफ्ज अहल आम है जिसमें बीवी और घर के दूसरे अफराद भी शामिल होते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ जो है वो बेटी या दामाद और नवासे शामिल नहीं होते, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत जो है ना, वो कुछ लोगों ने सिर्फ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनको जो है वो अहले बैत और बाकी सब अहले बैत से खारिज, नऊज़ बिल्लाह। नहीं, सारे अहले बैत में दाखिल हैं, सारी बीवियां तो पहले अहले बैत में आती हैं, उसके बाद औलादें आती हैं, ठीक है ना। बीवी पहले आती है कि औलाद पहले आती है? औलाद तो बाद में आती है ना बीवी के, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीवी है, यहाँ पर तो औलाद का कोई तस्करा ही कोई नहीं, यहाँ तो सिर्फ बीवी है और उसके लिए अल्लाह ताला अहल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई हम कौन होते हैं कि अहल में से बीवी को बाहर निकाल देने वाले, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जिसमें बीवी और घर के दूसरे अफराद भी शामिल होते हैं, इस मकाम में अगरचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तनहा अहलिया मोहतरमा ही थी, कोई दूसरा ना था, मगर ताबीर में ये आम लफ्ज इस्तेमाल करने से इस तरफ इशारा पाया गया कि मजालिस में अगर कोई शख्स अपनी बीवी का जिक्र करे तो आम लफ्जों से करना बेहतर है, ठीक है। बेहतर है, कोई ऐसा फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन वही बात है आदाब, ठीक है, आदाब के लिहाज में की वजह से बेहतर है। जैसे हमारे उर्फ में कहा जाता है, मेरे घर वालों ने ये कहा है, घर वालों ने, घरवाली, घरवाली भी कुछ लोग जो है वो घरवाली भी नहीं कहते बल्कि घरवाले, है ना, यानी मुजक्कर का सीगा बेगम साहिबा के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस वही है, हया, गैरत, अदब, तमीज, ठीक है ना, ये सब जो है ना, ये केक के ऊपर आइसिंग्स होती हैं जिससे कि केक जो होता है ना वो और मजेदार और दिल पजीर हो जाता है, दिल नशीन हो जाता है, देखने को भी बड़ा अच्छा लगता है वो केक। हालांकि केक के अंदर तो बस वही वो एक ब्रेड डाली और आपने जो है वो थोड़ा सा जो है वो जैसे भी खवातीन बनाती हैं केक, राइट, लेकिन केक के ऊपर आपने जब ये सारी टॉपिंग्स लगा दी और आइसिंग्स लगा दी और उसके ऊपर जो है वो फ्रूट से जो है वो उसको आपने मुजयन कर दिया, तो उस केक में और एक पाउंड केक में, जो बेकरी का पाउंड केक होता है ना, कितना फर्क पड़ जाता है ना। तो ये सब अदब आदाब जो है ना, ये यही है, ठीक है, इससे चीजें जो है वो खूबसूरत हो जाती हैं, ठीक है। वरना बीवी का नाम, ये नहीं है कि बीवी का नाम लेना कोई हराम है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है। अल्लाह ताला को तू करके जो दुआ मांगते हैं, क्या ये अदब के खिलाफ है? नहीं, अल्लाह ताला के लिए जो तू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो एक तो ये कि यही मशायख और अहले इल्म लफ्ज तू इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त इसकी ये तावील की जाएगी, यानी ये उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि लफ्ज तू जो है ना, इससे तौहीद मुकर्रर हो जाता, बहुत यानी हो जाती है, साबित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तू का जो है ना, ये लफ्ज जो है ये इस वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, ठीक है ना, बेअदबी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो है वो आपका लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी फिर वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात की जाएगी, देखा जाएगा इसको। अच्छा, फलम्मा जाअहा नूदिया अम्बूर का मन फिन्नारे वमन हौलहा व सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। तर्जुमा हम पीछे पढ़ भी चुके थे, जब मूसा अलैहि सलाम उसके करीब पहुंच गए ना, आग के करीब, तो उनको निदा दी गई कि बरकत है उसके अंदर जो के आग, यानी उसके साथ जो के आग के अंदर है और जो आग के बाहर है, ठीक है। वह सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और पाक है अल्लाह ताला की जात जो के तमाम आलमीन का पालने वाला है। ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूं, अल अजीज और अर रहीम अल हकीम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आग देखने और आग के अंदर से एक निदा सुनने की तहकीक, ठीक है। अब ये इल्मी तहकीक हजरत ने यहाँ पे लिखी है, थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड किस्म की बातें लिखी हैं। फरमाया कि पुराने करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया बहुत सी सूरतों में मुख्तलिफ उनवानात के साथ आया है। सूरह नमल की मजकूरा आयात में इस सिलसिले के दो जुमले गौर तलब है। यानी यही एक वाकया सूरह ताहा के अंदर भी और कई जगह पे, जैसे आगे हजरत ने नकल भी करी है वो आया, तो इनमें से ना खास दो जुमलों के ऊपर हजरत ने बड़ी तहकीकी बात यहाँ पर लिखी है। अव्वल तो बूरे का मन फिन्नार, और दूसरा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, ठीक है। और सूरह ताहा में जिसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है, इसी क्लास में हम चंद महीनों पहले सूरह ताहा जो है वो पढ़ के मुकम्मल कर चुके हैं, तो सूरह ताहा में जिसकी तफसीर पहले गुजर चुकी है, इस वाकये से मुतअल्लिक ये अल्फाज आए हैं। इज रआ नारा, जब उसने आग को देखा। इला कौलिही तआला नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखला नअलैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ व अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकिमिस सलाता लिज़िक्री। उसके बाद तो ये अल्फाज इसी एक वाक्य को बयान करने के लिए ये सारे अल्फाज सूरह ताहा के अंदर इस्तेमाल किए हैं। इन आयात में भी दो जुमले खास तौर से गौर तलब है, एक तो इन्नी अना रब्बुका, ठीक है, और इन्ननी अनल्लाह। और सूरह क़िसस में या कसस में इस वाक्य के ये अल्फाज हैं, नूदिया मिन शाफिल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकती मिन अश्शजरती या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ठीक है। कि जब मूसा अलैहि सलाम वही अपने शुएब अलैहि सलाम के पास से निकल करके मिस्र की तरफ ट्रैवल कर रहे थे ना, नीचे की तरफ आ रहे थे, तो यानी नीचे की मुराद ये इस मैप को अगर देखें तो हिसाब से ये साउथ वर्ड्स आना आना बनता है। तो उनके जो है ना वो दाएं हाथ की तरफ अयमन यानी दाएं हाथ की तरफ शातिल वादी, वादी के किनारे से, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो आपका ओशन आ जाता है, रेड सी का वो वाला क्या नाम है उसका, जो एक 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 बे आ जाती है मिस्र और इस वादी सीना के दरमियान। तो ये शातिल वादिल अयमनी है, वादी के बिल्कुल कोने के ऊपर। फिर बुकअतिल मुबारकती यानी एक यानी मुबारक इलाके के अंदर, ठीक है, यानी ये पूरी की पूरी वादी जो है ना, ये वादी सीना ये बहुत मुबारक जगह है। इसकी मूसा अलैहि सलाम के साथ एक बहुत यानी इंतहाई क्या कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है, मूसा अलैहि सलाम के साथ निस्बत है इसकी। और फिर इसकी यानी खसूसियत जो है, एक तो कुरान मजीद के अंदर भी है ना, वो वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, राइट, सीनीन के जो तूर पहाड़ है उसका अल्लाह ताला ने बाकायदा कसम खाई है कुरान मजीद के अंदर ना, तीन की इधर के साथ तूर सीनीन की। और आखिर जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे दुनिया के अंदर, तो उसके बाद फिर जब अमन कायम हो चुका होगा दुनिया में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का सब दज्जाल को मार दिया गया होगा और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुसलमानों के सरबराह बन चुके होंगे, इमाम मेहदी का भी इंतकाल हो चुका होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम ही अमीरुल मोमिनीन बन चुके होंगे, उस वक्त जो है जब याजूज और माजूज पूरी दुनिया के अंदर अपना फसाद और मार यानी कताल शुरू कर देंगे ना, ठीक है, याजूज माजूज, तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ईमान वाले जो उनके साथ उस वक्त मौजूद होंगे, तो उन ईमान वालों को लेकर के इसी वादी के अंदर जाएंगे और वहां पे याजूज माजूज नहीं आएंगे इन लोगों को मारने के लिए, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी इसका एक बड़ा यानी ताल्लुक बन गया इस जगह का। वेयर इज दिस प्लेस? तूरे सीनीन नाउ, ये वहीं पर है जहां पहले था, ये कोई पहाड़ जो है अपनी जगह से हिलता कोई थोड़ी है, ठीक है। तो अब जो है ना, अब आप देखें अगर आपके पास मैप है या कोई ग्लोब वगैरह है, तो जहां पे मिस्र है और सऊदी अरब, सऊदी ये पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है ना, वो और मिस्र के दरमियान एक वी शेप्ड आपको जगह नजर आएगी, ठीक है। इसको आप जो है वो मैप्स के अंदर खोलें ना, जो ऐप है आपके मोबाइल के ऊपर, तो उसमें अगर खोलें और फिर इस वादी को थोड़ा सा आप एक्सपेंड करें ना अपनी उंगलियों से जैसे बड़ा बड़ा करते हैं, तो उसमें आपको तूर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टूवर्ड्स यानी मिस्र की डायरेक्शन में है, तो ये इस वी शेप लैंड के अंदर ही, लेकिन मिस्र की साइड पर है, इस साइड पर नहीं है, सऊदी अरब की साइड पर नहीं है। आजकल वैसे एक नई थ्योरी भी आई हुई है कि नहीं, ये तूर सीनीन जो है ना ये सऊदी अरब के अंदर है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है भाई। तो खैर, तो ये जो आयात हैं इनमें हजरत फरमाते हैं कि इन तीनों मवाक़े में उन्वान ताबीर अगरचे मुख्तलिफ है मगर मजमून तकरीबन एक ही है, यानी अल्फाज और जो 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 क्या कहते हैं टॉपिक्स बन रहे हैं ना एक तरह से, तो वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक मजमून चल रहा है ना वो वही वाला मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही सफर है, ये नहीं कि मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ मूसा अलैहिस्सलाम ने कई बार इस तरफ की जर्नी करी थी, नहीं, वो एक ही जर्नी है जिसके बारे में ये सारी आयात है। वो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसरात में कई वजह से आग की जरूरत थी, हक तआला ने उनको कोहे तूर के एक दरख्त पर आग दिखलाई, उस आग या दरख्त से ये आवाज सुनी गई, इन्नी अना रब्बुक इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना और इन्नी अनल्लाहु रब्बल आलमीन, ठीक है ना। ये सारी एक दो तीन चार, ये चार अल्फाज जो हैं ये एक ही मौके के लिए कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मौके पर मौजूद है। ये हो सकता है कि ये निदा बार बार हुई हो, कभी एक लफ्ज से और कभी दूसरे लफ्ज से, ठीक है ना, यानी मुख्तलिफ अल्फाज अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों नकल किए हैं, उसकी उसकी एक पॉसिबल वजह ये है कि एक दफा आवाज आई, फिर दोबारा दोबारा से आवाज आई, दोबारा आवाज आई, चौथी मरतबा आवाज आई, ठीक है ना, हर मरतबा जो है अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ये इहतमाली दर्जे में ये इसके बारे में ना नबी अलैहिस्सलाम को भी कॉल मिला, अगर कॉल मिल गया होता तो यकीनन यहाँ पे वो नकल फरमा देते कि आपसे सुनने ऐसे फरमाया थे कि जी ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन चूंकि नहीं मिला तो फिर आप इहतमाली दर्जे में मुफस्सरीन जो है वो तफसीर बयान करते हैं कि भाई इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि सारे अल्फाज सुनाई दिए हों इनको, ये हो सकता है कि निदा बार बार हुई हो, कभी एक लफ्ज से और कभी दूसरे लफ्ज से, और आवाज सुनने की जो कैफियत तफसीर बहर मुहीत में अबू हयान ने और रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने नकल की है, वो ये है कि ये आवाज इस तरह सुनी कि हर जानिब से यकसां आ रही थी, जिसकी कोई जहत मुतय्यन नहीं हो सकती थी, ठीक है, यानी आग की तो जहत थी कि वो इस डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में मूसा अलैहिस्सलाम चल के आए थे, लेकिन आवाज की कोई जहत नहीं थी, ठीक है, कोई 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 डायरेक्शन नहीं थी। हत्ता के हमने जब सूरह ताहा की तफसीर पढ़ी थी तो हाँ वो उसमें भी यही बात लिखी हुई थी, जो जैसे कि मजीद आगे लिखा हुआ है, और सुनना भी एक अजीब अंदाज से हुआ कि सिर्फ कान नहीं बल्कि हाथ पांव वगैरह तमाम आजाए बदन उसको सुन रहे थे, जो एक मोजज़े की हैसियत रखती है, ठीक है, यानी ये जो आवाज थी ना ये आवाज अल्लाह ताला ही की आवाज थी, ये कोई जिब्राइल अमीन की आवाज नहीं थी, या ये किसी और फरिश्ते की या किसी और किस्म की आवाज नहीं थी, ये वाकई अल्लाह ताला ही की आवाज थी। और इसकी एक शान क्या बयान करी कि हर जहत से आ रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर हर तरफ से एंटर हो रही थी, गोया कि ये एक रूहानी आवाज थी। तो ये जो हमारे कान है ना, दो ईयर्स जो हमारे दोनों हेड के दोनों तरफ लगे हुए हैं, ये तो फिजिकल बॉडी के फिजिकल ईयर्स है, ठीक है ना। रूह तो पूरे जिस्म के अंदर एक जैसी है, ये नहीं कि उंगली की रूह जो है वो कोई मुख्तलिफ किस्म की रूह है और कान की रूह जो है वो उसके अंदर कोई हेयरिंग कैपेसिटी वाली रूह है और जो है वो पैर के अंदर जो है वो कोई चलने वाली रूह है और सर के अंदर जो है वो दिमाग वाली रूह है। नहीं, ये सारी की सारी रूह जो है वो एक ही है। इस रूह के अंदर जो है ना वो तख्सीस नहीं है कि ये कान है और ये पैर है और ये है वो है, ऐसा ऐसा मामला नहीं है। हाँ, मशाइख के यहाँ वो जो लताइफ वाली डिस्कशन है वो एक डिफरेंट है, वो उसका मतलब भी ये नहीं है जैसे कि कान वाला और आंख वाला और पैर वाला और सर वाला, ये ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो रूह तो हर तरफ से एक ही है ना, तो जो रूहानी आवाज अंदर आ रही थी वो रूह में एंटर हो रही थी, और रूह तो जिस्म के हर हर कोने में हर हर पोर के अंदर रूह मौजूद है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ये एक गैबी आवाज थी जो बिला कैफ व बिला सिमत सुनी जा रही थी, यानी इसकी कैफियत जो है ना फिजिकल वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइबेबल नहीं थी, ठीक है। तो इसको बिला कैफ फरमा दिया, और बिला समित यानी हर तरफ से सुनाई दी जा रही थी, लेकिन मबदा उसका वो आग या दरख्त था जिससे आग की शक्ल उनको दिखाई गई, ठीक है। मबदा का मतलब क्या कि गोया के प्रोड्यूस वहां से हो रही थी, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद फ्रॉम ऑल डिफरेंट साइड जो है ना ये आ रही थी, ठीक है। जैसे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक हमारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इसकी गोया के सिमिलिट्यूड मिसल जो है वो, जैसे एक आपने एक लाउड स्पीकर लगा दिया हो तो उस लाउड स्पीकर के अंदर से आवाज क्रिएट तो हो रही है, लेकिन अब फॉर सम रीजन अगर आपने रिफ्लेक्शंस ऐसे बना दी हो कि भाई हर तरफ से आवाज जो है ना वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर वो इधर से भी आ रही है, 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 लेकिन प्रोड्यूस तो वो एक लाउड स्पीकर से हो रही है ना, ठीक है। तो अल्लाह आलम अल्लाह ताला ने वहां पे क्या सा मामला किया हुआ था। तो मबदा, मबदा का मतलब वहां से जो बिगिनिंग जैसी जगह से हो रही थी ना वो आग या दरख्त था। अच्छा, ऐसे ही मौके आमतौर पर लोगों के लिए मुगालते और बुत परस्ती का सबब बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तफसील है ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये हजरत ने इन दो आयात के ऊपर इतना फोकस क्यों किया हुआ यहाँ पर और इतनी तफसील क्यों बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह आप यहाँ से शुरू होती है। किसी को कोई अगर सवाल हो आज की क्लास के बारे में तो पूछ लीजिए, वरना आगे तो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई अगर सवाल है तो रेज हैंड करके बता सकते हैं, वरना क्लास बंद कर देते हैं। आवाज आपके अहलिया ने भी सुनी थी, इसका कहीं तस्करा नहीं है। अब मुझे अल्लाह वाला मुझे नहीं मालूम कि अहलिया ने भी सुनी थी कहीं सुनी थी, और कहीं हमने तस्करा ना सुना कभी पढ़ा तो हो सकता है कोई जवाब यही हो कि नहीं सुनी थी अहलिया ने, क्योंकि वो तो साथ ऊपर नहीं आई थी ना, वो तो काफी दूर थी, ठीक है। और ये आवाज के बारे में ऐसा भी नहीं कोई इतनी लाउड आवाज थी कि पता चला पूरी वादी के अंदर गूंज रही हो, ऐसा भी कहीं तस्करा नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली अहलिया ने नहीं सुनी थी ये वाली आवाज, ठीक है। चले हम फिर क्लास खत्म करते हैं। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।